The following is a lecture on Udhav Chandra Bhramar Gita from the Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 47, Verse 17, on the topic of Krishna is the most cruel person in the universe. This lecture is given by His Holiness Radha Govinda Das Goswami on 29th of December, 1998, and 1999.
Mrigayuriva Kapindram Divyadhe Lubdha Dharma.
Mrigayuriva Kapindram Divyadhe Lubdha Dharma.
Sriyamakrta Virupam Strijipah Kamayanam. Balimapi balimatva vestayadvanshavatyah.
Balimapi balimatva vestayadvanshavatyah.
Alamasita sakhyair dustajastat kathārthah.
Alamasita sakhyair dustajastat kathārthah.
Kincha krishnasya purvāri karmāri anusandadhāna vibhene. Asmaditya. इतना ही नहीं, कृष्ण के पूर्व पूर्व जन्मों की बात सुनकर के और डर लग रहा है। ये कृष्ण का निरंतर संस्कार ऐसा है कि वे निर्दय है। हमने पौर्णमासी जी के मुख से सुना है कि कृष्ण पूर्व जन्म में राम थे, तो भगवान के रूप में नहीं मान रहे हैं किसी को। पूर्व जन्म में राम थे, लेकिन क्षत्रिय बने। उस समय इतना कठोर हृदय था, ये कहने का आशय है कि जब जन्म जन्म का संस्कार है इसी तरह से क्रूरता का, तो उसके साथ क्या संधि की जाए। जब पूर्व जन्म में राम थे, क्षत्रिय में जन्म लिए थे सूर्यवंश में, तो कपिंद्र का वध कर दिए। कपिंद्रम विद्यत, कोई बहेलिया भी व्याध भी बानर को नहीं मारता है, और ये बानर राज को मारते। कपिंद्र कहकर बाली की निर्दोषता बता रहे हैं। ये कपियों में श्रेष्ठ है, इंद्र का अर्थ होता है श्रेष्ठ, सब गुण में श्रेष्ठ, वो बध के जो कभी नहीं, लेकिन उसको मार कपिंद्र। इसमें यदि अ को रखेंगे, अलुब्ध धर्म, अलुब्ध धर्म होकर भी कपिंद्र का वध किए। अलुब्ध धर्म है इसका अर्थ। लुब्ध तो बहेलिया को कहते हैं, लुब्ध से ये धर्म कौर्ज काठिन्यादय तदयुक्त अथवा अलुब्ध धर्म इति लुब्ध को ही तन्मान से अत्य काम विद्य थी अयम तो वृद्धा कठिन इत्यर्थ। अलुब्ध धर्म, बहेलिया नहीं थे, बहेलिया जैसे धनुष मान लेकर घूमते थे, लेकिन बहेलिया नहीं थे, राजकुमार थे। तो अलुब्ध धर्म होते हुए भी यहां तक कि तपस्वी का भेष धारण करके जटा बढ़ा करके वन में घूम रहे थे, लेकिन लज्जा नहीं आई एक बानर राजकुमार में। स्वभाव जिसका तो स्वभाव जल्दी छूटता नहीं, कठिन स्वभाव। मृगयुरिव कपिंद्रम दिव्य, बहेलिया की तरफ मृगयुर, मृगयु का यहां अर्थ है कि छिप करके, यानी सामने लड़ करके मारते, और छिप करके मारे। जैसे बहेलिया मृग को मारने जाता है तो मृग का चमड़ा ओढ़ लेता है और झाड़ी में छिप जाता है, तो मृग देखते भी है तो सोचते हैं कि हमारे जाति का कोई उधर चल रहा है। मृगयुरिव साधु बन गए थे 14 वर्ष के लिए पिता की आज्ञा से, और वन में जाकर के जहां भजन पूजन करना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए, ऋषि मुनि का सत्संग, तो बानर का वध जो स्वभाव है छूटता नहीं। निर्गैर व कपिंद्रम विद्या, एक तो ये गलती हो। और उसी समय और क्या गलती हुई, स्त्रियम विरूपम अकृत, एक स्त्री को विरूप कर दिए, उसका कान और उसकी नाक काट कर विरूप कर दिए। और कैसी स्त्री, कामयाना, कामयाना का अर्थ है काम ही जिसकी सवारी थी, यान काम पर चढ़ करके आई थी, और वो अभी काम बसना किसके प्रति थी, उनके प्रति बेचारी आई थी कि हमसे विवाह कर लीजिए, उनकी कामना कर रही थी, और उनकी कामना जो स्त्री की उसकी ये दुर्दशा है। और ऐसा नहीं है कि चलो जटा बढ़ाए हैं, विरक्त है इसलिए स्त्री नहीं चाहिए, स्त्री जीत वो सीता के कहने से नाक कान काटा गया उसका, हिंट किया थोड़ा सा बस इसी पर तो सीता परतंत्र स्त्री जीता, एक विरक्ति के कारण करते कि हमको स्त्री से कोई मतलब नहीं, ये भी नहीं, वो भी नाक कान काटने की जरूरत नहीं थी, कह देते कि हम विवाह नहीं करेंगे भाई, हम महात्मा हैं, हम विरक्त है, तपस्वी हैं। विरक्त और तपस्वी क्या है, अयोध्या से सीता को ले गए थे और वह पूरा कंट्रोल कर रही थी इनको, स्त्री जीता स्त्री के बस में होकर के सुप्रण खा कर नाक कान काटा गया था। ऐसा नहीं कोई ब्रह्मचर्य के आवेश में भजन में विक्षेप होता है इसलिए करती है। और ऐसी स्त्री की नाक कान काटी गई जो इनसे विवाह करना चाहती थी, बताइए इतना निर्दय कोई हो सकता है। और विरूप इसलिए कि दूसरा भी कोई उससे विवाह न करने पाए, अरे उनको नहीं करना था छोड़ देते, दूसरा तो कोई कहता, लेकिन कोई न कर पाए इसके लिए विकराल कर विरूपा कर विभक्त स्वरूप कर छोड़ दे, नहीं विवाह करे, लेकिन उसको इतना बदरूप कर दिया, इतना बदरूप कर दिया कि फिर कोई नहीं ही किया होगा, या रावण ऑपरेशन कराया होगा तो हो सकता है, प्लास्टिक की नाक कान जोड़ा होगा तो जाकर उसका उसको विरूप किया। अरे भ्रमर, ये तो जब क्षत्रिय बने थे तब किए थे, तो क्षत्रिय तो कुछ कठोर ऐसे भी होते हैं, तो चलो उस समय भी मान लो अगर तुम कहो कि इस पर भी हम संधि कर लें, तो भय तो इसी पर काफी लगता है कि नहीं नहीं ये स्वभाव गया नहीं। लेकिन इसके पहले जब एक ब्राह्मण में जन्म लिए थे, और वो भी देवता योनि में ब्राह्मण में जन्म लिए, तब का क्या इनका आचरण था, बलिमति बलिम अत्वा आवेष्टे ध्वंस वक्त्य, जैसे कौवे बलि खा करके बलि देने वाले को ही घेर करके मारने लगते। हमने अपने गांव में देखा था, एक माता जी काली जी को भोग लगाने के लिए कुछ प्रसाद लेकर के गई थी, तो वो उसमें एक कौवे को डाली, कौवे को डाला तो वो कौवा अपने जाति के और लोगों को काम काम करके बुला लिया, और वो लोग घेर करके वो माता जी को मारने लगे, ध्वंस हुआ कौवा जैसा, जो खाने को दिया उसी को मार दिया बेचारे। बलि महाराज इतना बड़ा राज्य दिए पर उनको ही बांध, स्वभाव बहुत बुरा है तब न, आदमी कोई थोड़ी सी वस्तु दे दे तो उसका कृतज्ञ हो जाता है, जीवन भर आभार मानता है, लेकिन ये तो उसी समय बांध कर गिरा। और इसके जितने साथी हैं सब वैसे ही है, वो गरुड़ को कहा कि बांधो तो वो भी निर्लज होकर बांध दिया, पटक दिया। तो ध्वंस कौआ जैसे स्वभाव, यह जो तद अलम असित सख्य, इसलिए असित के सख्य से इस काले की मित्रता से बस बहुत हो गया, अब हमें नहीं करना है। जितने काले होते हैं सब कपटी होते हैं, राधा रानी कह रही है, कालों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, अलम असित सत्य। सख्येना ना कहकर सख्य ही कह रहे हैं बहुवचन में, मतलब कृष्ण बहुत बहुत तरह की मित्रता किए थे, बहुत बहुत तरह का प्रेम, एक भी प्रकार का नहीं, लेकिन किसी भी प्रकार के प्रेम से अब कोई हमारा मतलब नहीं, अब प्रेम नहीं, अलम असित सख्य अथवा असित ही सख्य ही अलम, जितने काले हैं उनसे अब हमारे कोई मतलब नहीं, न कोयल से न तमाल वृक्ष से न कुछ भी। राधा रानी कभी कभी कहती थी, मैं जहां रहूं वहां उजला चंदोवा तांद चांदनी, आकाश न दिखाई पड़े क्योंकि यह अभी काला है, काला बादल मुझ मेरे दृष्टि में न आवे, जितने तमाल वृक्ष हैं वृंदावन में सब पर चूना तो मैं काला देखना नहीं चाहता, कोयल जितनी है पकड़ करके उनको उजला में रंगो, ऐसे कहती मैं काला देखना ही नहीं चाहता। तो सबसे ज्यादा उस काले को ही देखने के लिए व्यग्र थे, लेकिन प्रेम की यह एक भंगी विशेष है, संचारी भाव जो भ्रमर कह दिया कि जब इतना नफरत है आपको कृष्ण से तो उनकी बात क्यों कर रही है। तो राधा रानी कहते हैं दुस्तेजस तत्कथार्थ, कृष्ण कथा का कथा रूप अर्थ दुस्तेज, कथा ही अर्थ है पंचम पुरुषार्थ, बहुत बड़ा धन है। भ्रमर क्या कहे, कृष्ण को छोड़ सकते हैं लेकिन कृष्ण कथा नहीं छूटे, दुस्तेज है कृष्ण कथा छोड़ दे, दुस्तेजस तत्कथार्थ किसी भी तरह से नहीं छोड़ सकते, दुस्तेज तत्कथार्थस्य असितस्य कृष्णस्य कथार्थः कथा रूपो अर्थः दुस्तेज त्यक्तुम अशक्य परम पुरुषार्थत्वेन इति वास्तव अर्थ। टीकाकार कहते हैं परम पुरुषार्थ है कृष्ण कथा तो कैसे छूटे, यही वास्तविक लाभ है सबका, ये वास्तविक अर्थ। अथवा एको दुरंतो मोहन स्वभाव, एक कृष्ण का एक मोहन स्वभाव है कि वो छूट जाते हैं लेकिन उनकी कथा नहीं छूटती, ये अभी कृष्ण का ही एक मोहक स्वभाव है कि उनके बारे में कुछ भी वर्णन कर दिया जाए तो वो वर्णन फिर नहीं छूटेगा, उनको तो छोड़ो या न छोड़ो तो छोड़कर चले ही जाते हैं लेकिन उनकी कथा रह जाती है, तो भय बस ये ईर्ष्या पूर्वक उक्ति है इस श्लोक में। इस बात को सुनकर कोई दूसरी गोपी वहां थी और वो कहती है, सखी राधा रानी से कहती है, तुम दोषारोपण कर रही हो कि ये जब राम बने थे तो इतने कठोर थे, लेकिन हमारी दृष्टि में उस जन्म में इनका जो स्वभाव था इससे अच्छा था, उस जन्म में जो कृष्ण का स्वभाव था इससे अच्छा था, बिगड़ते बिगड़ते संस्कार की सफाई हुई नहीं और क्रूर होते गए होते, तो उस समय तो कोमल थे। उस श्लोक में सूरदास जी का पद है, हरि संभलो सपति सीता को, हरि संभलो सपति सीता, हरि सोमन कृष्ण से अच्छा थे वो सीता के पति, सीता जी के पति कृष्ण से अच्छा थे स्वभाव में अच्छा, हरि सोम भलो सुपति सीता को, कैसे कि जब सीता जी चोरी चली गई तो बन बन खोजत फिरे बंधु संग, बन बन खोजत फिरे बंधु संग, बन बन खोजत फिरे बंधु संग, कियो सिंधु बीता को, कियो सिंधु बीता, और सिंधु को जो अपार था उसको उन्होंने बीता बना दिया, मतलब आसानी से पार करके बहुत मेहनत की बीता भर बना दिए, बीता इसको कहते हैं, एक बीता दो बीता। लंका में सीता जी चली गई थी, रावण ले गया था और इतना प्रेम करते थे सीता से कि सिंधु को बीता भर बना दिए, पुल बांध दिए, बहुत बड़ा सेतु बना दिए। कितना कितना मानते थे वे सीता को, छोरी जाने पर रोते फिरते थे, बन बन फिरत बंधुसन, बन बन खोजत फिरे बंधुसन, बन बन में कंदरा में नदी के तट पर इधर उधर कुंज में पेड़ के पास खोजते चलते थे, रोते चलते थे, वो बहुत अच्छे थे, अपनी पत्नी से प्रेम करते थे। और सीता के लिए ही तो समुद्र बंधन किए ना, सीता नहीं गई होती तो थोड़े ब्रिज बनाते हैं। सीता को पाने के लिए समुद्र पर इतना बड़ा परिश्रम करके पुल बनाए। रावण मारो लंका जारी, मुख देखो सीता को, रावण मारो लंका जारी, मुख देखो सीता, दूत हाथ उन्हें लिखिन पठायो निगम ज्ञान गीता को, दूत हाथ उन्हें पठायो, रावण को मारे, लंका को जला दिए और सीता से भेंट किए। उन्होंने तो हनुमान जी के हाथ से कोई निर्गुण ब्रह्म के उपदेश की बात लिखकर नहीं भेजा, नहीं कहा कि सीता तुम निराकार ब्रह्म की उपासना करो हमको भूल जाओ। और यहाँ तो निगम ज्ञान गीता आई है, यहाँ भगवत गीता का उपदेश चल रहा है। दूत हाथ उन्हें लिखी न पठाओ निगम ज्ञान गीता को, तो श्री राम ज्ञान नहीं सिखाया राधा सीता जी को, तो सखी अच्छा कह रहे कि राम अच्छा थे। उस जीवन में उस जन्म में कृष्ण का स्वभाव अभी बहुत कोमल था, राधा रानी को कहते तो बहुत कठोर थे, सूर्पणखा को कुरूप किए और बाली को मारे और इस तरह से और भी कई होंगे कि यार ये इतने कठोर हैं, उनके पिताजी छटपटा कर मर गए लेकिन वन में भाग ही गए, है ना, ये भी सब दोष है। तो जानते थे कि हमारे पिताजी मर जाएंगे हमारे आदर्शन, उसने फिर भी चले गए। तो दूत हाथ उन्हें लिखी न पठाए निगम ज्ञान गीता, ये बात बहुत अच्छी, ठीक है, वो दूत भी भेजे, हनुमान जी को दूत बनाकर भेजे लंका में, लेकिन अपनी अंगूठी दिए देना है पहचान के लिए और सीता को समझा देना कि मैं आ रहा हूं, चिंता न करे, उसके बाद पुल बनाए भगवान। उन्होंने अपने हाथ से लिखकर पत्र नहीं दिया और उस पत्र में भी गीता का ज्ञान नहीं दिया कि तुम भस्म रमाओ, जोगिनी बन जाओ और ब्रह्म को लखो, अलख निरंजन करो, यह सब नहीं किया। रावण मारो लंका जारी, मुख देखो सीता को, रावण मारो लंका जारी, मुख देखो सीता, दूत हाथ उन्हें लिखिन पठायो निगम ज्ञान गीता को, दूत हाथ उन्हें अगर अब क्या विश्वास कृष्ण का किया जाए। अब धौ कहा परेखा की जय, कुबजा के नीता को, परेखा में प्रतीक्षा, क्या आशा रखा जाए कुबजा के मित्र की, जो कुबजा जैसी गई बीती औरत का भी मित्र हो सकता है, उस पर क्या आशा करती है। अब धौ कहा परेखा की जय, कुबजा के नीता को, जैसे चढ़त सब सुधि भूली, ज्यों पीता चीता को। यदि खूब उत्कट मदिरा हो और पढ़ने पर जब चित्त जब नशा चढ़ जाता है तो जो पीता है वो कभी चेता है, इसका क्यों जो पीता चीता, चीता को कौन चेता है, पीने वाला मदिरा कौन होश में रहता है। जैसे चढ़त सदय सुधिभू लीजिए पीता चीता, मतलब कृष्ण का ये स्वभाव है भिन्न भिन्न स्त्रियों से, नए नए स्त्रियों से नेह लगाना, बहुत कृपा किए। पढ़ो पढ़ो पत्र तो पढ़ो, कितना अच्छा लिखा है। किन्हीं कृपा जोग लिख पठयो निरखु पत्र रीता को, ताको मैंने उनके उनके पत्र को तो जरा पढ़ो, कितनी अच्छी बात लिख दिए हैं। क्या लिखे हैं, पहले तो कृपा किए पत्र लिखे, किन्हीं कृपा तो जोग लिखी पठयो, योग करने के लिए भेज दिए। निरखु पत्र रीता को सूरदास प्रेम कह जाने लोभी नवनीता को। अरे जो इतना छेछर व्यक्ति है जिसको अपने इज्जत का ध्यान नहीं है, जो माखन चुरा करके खा सकता है उसको क्या दूसरे से प्रेम करेगा, जिसको अपने इज्जत का भी ठिकाना नहीं है, ठिकाना नहीं। नवनीत के लोभ से कितनी कितनी बदनामी यह सहता है। कोई इज्जतदार आदमी अपनी इज्जत देखेगा कि माखन देखेगा? तो जो नवनीत खाता फिरता था ब्रज में और अपनी इज्जत नहीं देखा, तो क्या प्रेम करना सीखेगा जानेगा, प्रेम की कीमत क्या जानेगा। सूरदास प्रेम कह जाने लोभी नवनीता को। और कविता है सीता ऊपर तो इधर नीता चीता मीता गीता ऐसा आ रहा है। क्या प्रेम जाने। सूरदास जी ने लिखा है इस पद जैसे हम छोड़ दिए थे 15वें श्लोक में 16 पृष्ठ पर, कोई सखी कह रही है सुनियत ज्ञान कथायली गात, सुनियत ज्ञान कथा अली गात, सुनियत ज्ञान कथायली गात। सुन रही हूँ कि ये अली ज्ञान कथा गा रहा है, ज्ञान की कथा कह रहा है। गात माने गा रहा है, अली माने भौर। सुनती हूँ कि भौरा ज्ञान बखान रहा है आकर के ब्रज में। उद्धव जी से ही राधा रानी कह रही हैं, लेकिन भौरा का बहाना करके। जेहि मुख सुधा बेनुरव पूरित, जेहि मुख सुधा नुरव पूरित, पूरति नहीं पूरित, हरि प्रतिक्ष नहीं सुनात, हरि प्रतिक्ष नहीं। अपने पूर्व के आनंदमय जीवन को और इस समय इस दुखद क्षण का मिलान कर रही हैं गोपियां। एक वो समय था कि हम कितना सुख में थी और आज ऐसा दिन आ गया। एक दिन ऐसा समय था कि हमारे प्रियतम अपने श्रीमुख से अपने अधर सुधा को वेणु के शब्दों में पूरा करके भर करके और हमको क्षण क्षण सुनाया करते थे, बांसुरी में अधर सुधा पूरित करके और हमें सुखी करते थे, हमें सुनाते थे। एक दिन वो होता, लेकिन आज भौरा के द्वारा ज्ञान की चर्चा सुननी पड़ रही है। ऐसा हो गया जह लीला रस सखी समाज ही कहत कहत दिन जात। अरे सखी, यही वो स्थान है ब्रजभूमि कि जह लीला रस सखी समाज ही कहत कहत दिन जात। अपने सखियों के समाज में सखी समाज ही अपने प्रियतम के लीला रस को कहते कहते दिन बीत जाता आनंद से। बड़ा दुखमय दिन था, दुखमय बात थी, लेकिन प्रियतम की एक एक लीला माधुरी आदि को गाते गाते समय बीत जाता था, कट जाता था। जहां लीला रस सखी समाज ही कहत कहते दिन जात, विधना फेरी दियो सब देखत तो खडपते समझा। विधाता ने वो दिन फेर दिया, आज छह पैर वाला भ्रमर गुरु बनकर यह कथा सुना रहे। अब सब चुप रहो, इसी की कथा सुनो। और ये भी मथुरा से पंडित बनकर आया है, जहर उगल रहे, क्या कहा जाए। एक दिन ऐसा समय था कि हम लोग प्रियतम की बांसुरी सुनते थे और आपस में उनकी लीला कहते थे। मतलब आज जो वन में किए हैं उसी का, कल जो वन में किए थे उसी का वर्णन करते थे। तो लीला रस सखी समाज है, सखियों के समाज में हम आपस में कहते थे, सुनते थे और दिन बीत जाता था। और अब यह पंडित जी आ गए कथा बांसने के लिए। सुनो, भरतेंदु जी ने लिखा है कि आपन पियरवा अब भई ले पराया रामा, हरि हरि सुनत जुड़ाओ सब छाती रे हरि। सुन लो कि अपने जो प्रियतम थे अब कुब्जा के हो गए, छाती खूब ठंडा कर लो, पत्र भेजो, जुड़ा लो छाती को हृदय से लगा लगा। मथुरा के देशवा से भेजल ले पियरवा रामा, हरि हरि ऊधो लैले जोगवा के पाती रे हरि। आज ये भावरा कथा कह रहा है, कहा खट पद समझा, ये आकर समझा रहा। वही स्थान है जहां पर हम लोग कृष्ण कथा करते थे, प्रियतम की लीला रस में मग्न रहते थे। तो आज यह है आकर क्लास दे रहा। विद्यमान रस रास लड़ते कत मन ते अरुझात, रूप रहित कछु बकत बदलते मति को ठग भुरवान। मसी नहीं है, मति। रूप रहित कछु बकत बदलते मति को ठग भुरवान। विद्यमान रस रास लड़ते, रास लीला के रसिक हमारे प्रियतम कृष्ण के रहते रहते क्या हमारा मन कहीं जा सकता है। और हम सुनती हैं कि कुछ रूप रहित निराकार बक रहा है, कुछ रूप रहित बक रहा है अपने मुख से, हमारे मति को ठगना चाहता है, बातों में भुलवाना चाहता है। अब तक तो हम लोग कृष्ण के रूप में आसक्त रहे और उनके रहते हुए हमारा मन कहीं नहीं जा सकता, लेकिन हम सुनती हैं कि ये रूप रहित पर प्रवचन कर रहा है, निराकार सब्जेक्ट पर इसका प्रवचन चल रहा है और बहुत कृपा करके आया। साधुवाद श्रुति सार जान के उचित न मन विसरात, नंद नंदन कर कमलन की छवि मुख उर पर प्रसाद। वैसे भाई भावरा जो भी कह रहा है वो भी साधुवाद है, अच्छा है, वो भी शास्त्र में लिखा गया है, शास्त्रीय बात बोल रहा है। तो उचित तो यह है कि उसका आदर किया जाए, लेकिन विवशता यह है कि कृष्ण हमारे मन से निकल नहीं रहे हैं, वो कैसे इसका आदर करें। और सब 24 घंटे तो कृष्ण के हाथ का स्मरण होता है कि किस प्रकार प्रियतम रास में थकने पर हमारे मुख को अपने हाथ से पोछा करते थे, हमारे हृदय पर अपने हाथों को रखते थे, हमारे मुख पर रखते थे। तो नंद नंदन कर कमलम की छवि मुख उड़ पर परसा। जब इधर उद्धव जी का प्रवचन चल रहा था तो गोपियों को भगवान के हस्त कमल का स्मरण आ रहा था। तासाम अति विहारेण श्रांता नाम बदनामी सब प्राण रजत पद्म पाणी ना, ऐसे आया। भगवान रासलीला में थकी हुई गोपियों के मुख को अपने हाथ से पोछे थे और हवा किए थे परिश्रम दूर करने के लिए। एक एक ते सबे सयानी ब्रज सुंदरी न सकात, सूर श्याम रस सिंधु गामिनी नहीं वह दशाहिरा। उद्धव से कहते, उद्धव जी इस ब्रज में एक से एक सयानी गोपियां हैं चतुर, यहां एक भी आपका संदेश नहीं सुनेगी। कारण यह है कि सूर श्याम रस सिंधु गामिनी नहीं वह दशा हीरा, प्रत्येक को प्रियतम कृष्ण का संग मिला हुआ, सब कृष्ण के साथ नाची है, उनके रूप को देखी है, उनकी बात को सुनी है, अतः वे रस सिंधु गामिनी है। रस के समुद्र में सबने विहार किया है, इसलिए आपके इस विषैले गड्ढे में अब कोई नहीं जाएगा, इस निर्गुण ब्रह्म को ले जाइए। एक एक ते सब सयानी ब्रज सुंदरी न सकात, सूर श्याम रस सिंधु गामिनी नहीं वह दशा है। वो दशा कभी विस्मृत नहीं होती है जब हम लोग कृष्ण के साथ थे। मधुकर हो हूँ यहाँ ते न्यारे, मधुकर हो हूँ यहाँ ते न्यारे, न्यारे माने दूर, मधुकर पहले तुम यहाँ से हटो जाओ, हमारा चरण मत छू। तुम देखत तन अधिक तपत है अरुणन के तारे, अपनो जोग सैति धरि राखो यहाँ लेन को डारे, यहाँ लेन को डारे, तुम अपने जोग की गठरी संभाल करके, सैति मैंने संभाल करके बांधो और यहाँ से जाओ। यहाँ क्यों छोड़ रहे, कौन लेगा, यहाँ लेत को डर, यहाँ इसको डाल रहे हो, कौन लेगा, यहाँ तुम्हारे जोग को कोई नहीं लेगा, ले जाओ मथुरा। तोरे हित अपने मुख करी है मीठे ते नहीं खारे, तुम्हारे चलते हम अपने मुख को मीठा से खारा नहीं करेंगे ना, अब तक हम अमृत पी है तो तुम्हारे कहने से जोग करेंगे, तुम्हारे कहने से हम जहर नहीं पियेंगे। हमरे गिरिवर धरक नाम गुण बसे कान उर बारे, सूरदास हम सब एक मत तुम सब खोटे कारे, हमें तो गिरिराज धरण के नाम गुण से ही काम है और कान है के साथ हमारा जो प्रेम है उनके नाम गुण से हमारा जो परिचय हो बारे बचपन से ही है और हम सब एक मत की हैं। तुम ये सोचो कि हमारे पास से जाकर के हमारी दूसरी सखी को निर्गुण ब्रह्म के संप्रदाय में कर दोगे, ऐसा हो नहीं पाएगा, हम सब एक मत हैं। सूरदास हम सब एक मत तुम सब खोटे कार्य, और तुम लोग जितने काले हो सब खोटे हो, सब में दोष भरा, हम सब एक मत है, इसे सीखना चाहिए भक्तों को। ऐसा नहीं कि इसमें से एक दो को बहका करके कोई ध्यान निराकार और यह हवा हमें ले जाए, सब एक मत रहना चाहिए, रस सिंधु में विहार करना चाहिए। सूरदास हम सब एक मत तुम सब खोटे कार्य, राधा रानी किस तरह विलाप करती हैं, अनुकूल भाव से कहती हैं अपनी सखियों से, भारतेंदु हरिश्चंद्र के शब्दों में, आयो सखी सावन विद समान भावन, जो आयो सखी सावन कैसे करी मेरो चित हाय धीर धारी है, कैसे करी मेरो चित हे सखी, अब तक तो कुछ धैर्य था लेकिन अब सावन आ गया, अब कैसे मेरा चित धैर्य धारण करेगा, क्या सावन में आप चाहती हैं, अहे कौन झूलन ढिंडोरे बैठी संग मेरे है, हाय हाय अब हमारे प्रियतम हमारे संग झूले पर बैठने नहीं आएंगे, और कौन मनुहारी करी भुजा कंठ पारी है, अब कौन हमको मनाएगा और मना करके झूलन पर बैठाएगा, राधे झूलन में पधारो झुकी आए बदरा, कौन हमारे कंठ में अपनी भुजा रख करके और हमें इतना प्रेम देगा। हरिचंद्र भींजत बचाई है कौन भींजिया, और इस सावन में जब मैं अब भींजूंगी तो अब मुझे भींजने से कौन बचाएगा। हमारे प्रियतम तो स्वयं भींज करके और हमको भींजने से बचाते थे। हरिचंद भींजत बचाई है कौन भींजी आप, कौन उरलाई कामताप निर्वारी है, हमें हृदय से लगाकर हमारे काम स्वर को कौन दूर करेंगे। मान समय पग परी कौन समझे हैं है, जब मैं मान कर जाती हूँ तो हमारे प्रियतम हमारे पैर पर गिर करके हमको समझाते हैं मनाते हैं। अब कौन करेगा, कौन मेरी प्राण प्यारी कही कह पुकारी है, अब मुझे कौन प्राण प्यारी कहेगा। आयो सखी सावन दीदे समान भावन जो, आयो सखी सावन कैसे करी मेरो चित हाय धीर धारी है, कैसे करी मेरो चित हाय धीर धारी है, आई है कौन झूलना हिंडोरे बैठी संग मेरे, आई है कौन झूलना आई है कौन झूलन हिंडोरे बैठी संग मेरे, आई है कौन झूलन कौन मानुहारी करी भुजा कंठ पारी है, कौन मानुहारी करी हरिचंद भींजत बचिए कौन भींजिया आप, हरिचंद भींजत हरिचंद भींजत बचिए कौन भींजिया आप, हरिचंद भींजत बचिए कौन कौन उरलाई काम ताप निरवारी है, कौन उरलाई काम ताप निरवारी है, मान समय पग परी कौन समझै है हाय, मान समय पग परी कौन समझै है मान समय पग परी कौन समझै है हाय, मान समय पग परी कौन समझै कौन मेरी प्राण प्यारी कही कह पुकारी है, कौन मेरी प्राण कब में कौन मेरी प्राण प्यारी कही कह पुकारी है, कौन मेरी प्राण प्यारी कही कह पुकारी है।
सबसे नीचे घनानंद जी का है कि रस ही बरसी लाल देखी है हरि हमें, हम जल रहे हैं आपके विरह में हे प्रियतम हे घनानंद आनंद घन, कब रस बरसा कर हमें हरी भरी देखेंगे आप, मैं आप आएंगे आपका दर्शन होते ही मैं हरी हो जाऊंगी, नहीं तो मैं जल रही हूँ सुख गई।
रूप उजियार जान प्राण न के प्यारे कब, रूप उजियार करोगे जुनैया दैया विरह महात्म, सुख द सुधात हासी हेरनी पीवाय पिय, सुख द सुधात हासी जियही जीवाय मारी हौ दे जैसे जमय, जियही जीवाय मारी हौ दे जैसे जमय। मैं मर रही हूँ अमृत से भी अधिक सुखद अपनी हंसी को और हेरनी चितवन को पियाकर, हे प्रियतम कब हमें जियाएंगे और इस उद्योग को जो जमराज के समान है कब आप मारेंगे। सुंदर सुद से आखे बहुर्यो बसाय आय सुंदर सुद से आखे बहुर्यो बसिहा छवि ले जैसे हुलसी ये राम बसिहा छवि ले जैसे हुलसी। हमारी आंखों को कब सुंदर देश में बसाएंगे। आंखों के लिए सुंदर देश है भगवान का सौंदर्य। सुंदर सुदेश सुंदर सुदेश में अच्छे देश में आंखें बहुरो बसाए आए हमारी आंखों को बसाएंगे सुंदर देश में आपके रूप में और बसी हो छबीले जैसे हुलसी हिये रमे और आप हमारे हृदय से लगेंगे या हृदय में बसेंगे। वह कौन सी घड़ी होगी भाग उघरी भाग से भरी हुई भाग्योदय वाली भाग उघरी का हमारे भाग्य का उदय कब होगा कौन घड़ी आएगी जिस समय हे आनंद घन आप रस बरसा कर बात कह करके और अपना दर्शन देख करके हे लाल हे कृष्ण हमको हरी करेंगे हरी भरी करेंगे। होई है सो घरी भाग उघरी आनंद घन होई है सो घरी भाग रसही बरसी लाल देखी हौ हरी हमे रसही बरसी लाल देखी होई है सो उघरी भाग उघरी आनंद घन होई है सो उघरी भाग रसही बरसी लाल देखी हो हरी हमे फिर हरिश्चंद्र जी कहते हैं गोपियों की तरफ से कि हे उद्धव महाकुंज के समूहों में जहां हमने प्रियतम के साथ विहार किया है वहां योगासन लगाकर समाधि की बात मत करो करने वहां हम अब योगासन नहीं लगाएंगे। महाकुंज पुंजन में मिली के बिहार की ने महाकुंज पुंजन में मिली के बिहार की तहां बांधी आसन समाधि समुझावे जीन जौनांग लगे पियांग में बार बार जौन अंग लगे जौन अंग लगे पिया अंगन में बार बार जौन अंग लगे पिया ताप खूर धूर कोर माई वो बतावे जीन ताप खूर हरी चंद जही चख नित ही बिलो के श्याम हरी चंद जही चख नित ही बिलो के श्याम ताही मुंद जोग को अजोग ध्यान लावे जीन जाही कान सुनी प्यार हरि की मधुर बातें जाही कान सुनी प्यार हरि की मधुर बातें हाहा उधोता ही कान आलख सुनावे जी, आहा उधोता ही कान आलख सुनावे जी। महाकुंज पुंजन में मिलकर बिहार की ना, इन महान बड़े बड़े कुंजों के समूह में हमने मिलकर प्रियतम से बिहार किया है, घुमा है। ताही बांधी, कहाँ बांधी आसन समाधि समझावे जी। ये मत समझाओ कि अब यहाँ आसन लगाओ ये करो, कृष्ण के साथ जिन कुंजों में हम रही वहां आसन नहीं लगा सकती। जौन अंग लागो पिया अंगन में बार बार, जो हमारा ये देह प्रियतम के देह से बार बार लगा है, हमारी ये बाह उनके कंधे पर गई है, उनकी बाह हमारे कंधे पर आई है, हम मिल करके परस्पर रास विलास की है, तो इन अंगों पर अरे क्रूर धूर लगाने को मत कहो। और हरिचंद जाही चख नित ही बिलोके श्याम, जो हमारे चक्षु चख नित्य ही कृष्ण को देखते रहे हैं, अब उनको मूंद करके योग के अयोग ध्यान को मत सिखाओ। योग का जो ध्यान हमारे लिए अयोग ध्यान है, अब वो ध्यान करने के लिए मत कहो। और जाही कान सुनी प्यारे हरि की मधुर बातें, हाहा उधो ताही कान अलख सुनाओ, जिन कानों में हम प्यारे कृष्ण की मधुर बातें सुनी हैं, उन कानों में अब अलख है, अलख निरंजन मत टाय टाय करो। महाकुंज पुंजन में मिली के बिहार की ने, महाकुंज पुंजन में कहाँ बांधी आसन समाधि समुझावे जिन, जिन का तो नहीं मत, जिन ही कहता हूँ उसको हल्के स्वर से। जौन अंग लागो पिया अंगन में बार बार, जौन अंग लागो पिया अंगन में बार बार, ताप कूर धूर कोर माई वो बतावे जिन, ताप कूर धूर कोर माई वो बतावे जिन। हरिचंद जाही चख नित ही बिलोके श्याम, 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 ताही मुंद जोग को योग ध्यान लावे जिन, ताही मुंद जोग को जाही कान सुनी प्यार हरि की मधुर बाते, जाही कान सुनी प्यार हरि की मधुर बाते, हाहा उधो ताही कान अलख सुनावे जिन, हाहा उधो ताही कान अलख सुनावे जिन, हाहा उधो ताही कान अलख सुनावे जिन,
हाहा उधो ताही कान अलख सुनावे जिन।
उधो के ही विधि की जय जोग, उधो के ही विधि की जय जोग, जे रस रसी श्याम सुंदर के ते ते क्यों सहे वियोग, जे रस रसी श्याम सुंदर के ते क्यों सहे वियोग, उधो के ही विधि की जय जोग, पूछहु जाई चकोर चंद हित
दर्शन जो सुख पावत चातक स्वाति बूंद चित बांध्यो जल निधि मन ही न आवत उधो के ही विधि की जय जो अरु रस कमल शिली मुख जानत कंटक सूल सहय जो जाने रसिक मैन बिछड़न दुख मरत हूँ प्रीति लहै जो तुम हूँ रसिक कहावत मधु कर तुम हूँ रसिक कहावत मधु कर आप स्वार्थी जैसो कहा करे ये सूर प्रेम बस कहा करे ये सूर प्रेम बस बिनु हित जीवन कैसो उधो की विधि की जय योग उधो के ही विधि की जय जो जे रस रसी श्याम सुंदर के जे रस रसी श्याम सुंदर के ते क्यों सहें वियोग उधो के ही विधि की जय जोग।